को हम दो अलवारों की चर्चा कर रहे थे, विशेष करके नम्मा अलवार या जिनके अन्य नाम थे शतकोप, परांकुश या मारन, और थोड़ी चर्चा उनके शिष्य मधुर कवि अलवार के बारे में भी की थी। संक्षेप में चर्चा यह हुई थी कि उनका जन्म तिरुनगरी या कुरुकुर नाम के शहर में हुआ था, जहां पे आदिनाथ का दिव्य मंदिर है। यहां पर भगवान विष्णु के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, भगवान की सेवा की थी, इसलिए यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। और उसके बाद इस जगह का नाम हो गया कुरुकपुरी या कुरुकुर, बाद में नाम पड़ गया तिरुनगरी, और आजकल ये जगह अलवार तिरुनगरी नाम के नाम से जाना जाता है। नम्मा अलवार का जन्म, इसके बारे में भविष्यवाणी भविष्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण में भी हुआ है। उनका परिवार सात पीढ़ियों से महान वैष्णवों का था। उनका जन्म काफी अद्भुत हुआ। बचपन से ही उन्होंने अपने आंखें नहीं खोली, अपने कान से कुछ सुना नहीं, कुछ बोले नहीं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, केवल शांत चुपचाप एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर रख के मानो कि वो केवल भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ऐसे अवस्था में वो पड़े रहे। वास्तव में वो तो भगवान का चिंतन केवल कर रहे थे बचपन से ही। विष्णुदूत विश्वक्सेन के अवतार माने जाते हैं वो श्री संप्रदाय में। श्रीमती राधा रानी के संबंध में भी हम देखते हैं कि राधा रानी का जन्म या आविर्भाव जब हुआ तो उन्होंने भी अपनी आंखें खोली नहीं, और केवल जब श्री कृष्ण वहां उनके पास में आए तब उन्होंने पहली बार आंखें खोली। तब तक वृषभानु महाराज और अन्य सब सोच रहे थे कि ये बच्ची गूंगी है, बहरी है, अंधी है, लेकिन जब श्री कृष्ण वहां पर आए तो उनके सारी इंद्रियां कार्य करने लगी। तो राधा रानी ने अपनी दृष्टि, विशेष करके पहली दृष्टि, केवल श्री कृष्ण के लिए रखा था। तो इसी भाव में कि केवल हमारी आंखें भगवान के लिए हैं, हमारे कान भगवान के लिए हैं, हमारे जिह्वा भगवान के गुणगान करने के लिए है, इस भाव से नम्मालवार इन्होंने भी कुछ बोला नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, केवल अपनी दुनिया में, अंदर की दुनिया में भगवत चिंतन में मस्त रहते थे। उनके माता पिता प्रसन्न हुए कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, क्योंकि भगवान श्री नंबी के आशीर्वाद अनुसार उनको इस बच्चे का जन्म हुआ था। वो समझ गए कि अभी हमारे इस बच्चे के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो आदिनाथ मंदिर के पास में एक इमली का वृक्ष वहां पे प्रकट हो गया, जो कि वास्तव में अनंत शेष का रूप था, और उस बच्चे को वहां जब आदिनाथ मंदिर में ले गए तो बच्चा अपने घुटनों से चलते चलते सीधे उस इमली के वृक्ष के नीचे आया, और एक बार जब वहां आ गया तो अपना जीवन भर 32 या 35 साल की उनकी आयु थी, जब तक कि उन्होंने प्राण त्याग नहीं किया, केवल उस इमली के वृक्ष के नीचे रहे। उनके माता पिता ने उनके लिए एक सोने का पलंग वगैरह बनाया, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, केवल नीचे बैठे रहे, और पहले 16 साल तक एक शब्द नहीं बोला, एक कण भोजन स्वीकार नहीं किया। बाद में मधुर कवि आलवार, आगे चल के वो आलवार के नाम से माने जाते थे, वो एक ब्राह्मण परिवार के में जन्म लिए हुए थे, तीर्थ यात्रा में गए थे उत्तर भारत, अयोध्या, वृंदावन, द्वारका, काशी, बद्रिकाश्रम, और वहां से लौटते हुए उन्होंने एक प्रकाश देखा जो कि केवल रात में उनको दिखाई पड़ता था, बड़ा अद्भुत प्रकाश था। उनको पता नहीं चला कि ये प्रकाश का स्रोत क्या है, इसका कारण क्या है। उसको पीछा करते 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 वो सीधे श्रीरंगम तक पहुंचे, फिर भी उन्होंने देखा कि अभी आगे और दक्षिण की ओर है। और जब वो तिरुनगरी या कुरुकुर पहुंचे तब ये प्रकाश फिर नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने पूछताछ की कि यहां ऐसे कोई विशेष कोई साधु वगैरह हैं क्या, तो उनको मारन या नम्बालवार की ओर लोगों ने भेज दिया। वहां पर आके उन्होंने मारन या नम्बालवार की परीक्षा करना चाहा। उन्होंने एक पत्थर गिराया जमीन के ऊपर, उस आवाज से पहली बार नम्बालवार ने अपनी आंखें खोल दी और मधुर कवि आलवार ने उनको एक प्रश्न पूछा परीक्षा करने के लिए कि अगर एक सूक्ष्म वस्तु का जन्म जड़ वस्तु में होता है तो वो क्या खाता है और वो कहाँ रहता है। और तुरंत नम्बालवार ने एक क्षण भी न रोकते हुए उत्तर दिया कि ये वो खाता है और वहां रहता है। वो कहना चाहते थे, इसका तात्पर्य मधुर कवि आलवार समझे, इसका मतलब है कि आत्मा का पोषण किसी भौतिक चीज से नहीं होता। आत्मा कभी भौतिक भोग से संतुष्ट नहीं हो सकता है। आत्मा का पोषण है भगवान की भक्ति, इसलिए वो उस दिव्य आहार का को ग्रहण करता है और किसी चीज को नहीं। और वहां रहता है मतलब इस समय इस देह के भीतर है। और क्यों है? क्योंकि अपने कर्मों के अनुसार उसको पूरा जन्म मिलते रहते हैं, और जब तक कि वो भगवत भक्ति में नहीं लगेगा तब तक वो ऐसे ही रहेगा बद्ध अवस्था में। तो इस बात को समझ गए मधुर कवि आलवार, आश्चर्यचकित हो गए कि इतने जल्दी एक क्षण न रोके हुए भी उन्होंने इतना गहरा उत्तर, गंभीर उत्तर दिया। और फिर उनके शरण में आ गए, उनसे प्रार्थना किया कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर दीजिए। तो पहली बार 16 साल के बाद मारन या नम्बालवार ने अपने आंखें खोल के कोई शब्द कहे, लेकिन उसके बाद भी उस स्थान से वो हिले नहीं, केवल वहां पर पड़े रहे, बैठे रहे। और मधुर कवि आलवार उनके सेवक के रूप में रहे। ऐसा हुआ कि एक बार जब मधुर कवि आलवार उनकी सेवा कर रहे थे नम्बालवार की, तो स्वयं भगवान नारायण गरुड़ के ऊपर सवार होकर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और श्री भू आदि शक्ति शक्तियों से घिरे हुए उनके सामने प्रकट हुए। नम्बालवार को उन्होंने दर्शन दिया। नम्बालवार ने इस दर्शन को देखा, भगवान का सुंदर रूप अपने हृदय में उन्होंने बांध लिया। इतना दिव्य आनंद प्राप्त हुआ उनको, इतने भाव विभोर हो गए कि तुरंत स्वाभाविक रूप से उनके मुख से भगवान की स्तुतियां बाहर आईं। और जैसे गंगोत्री से गंगा जल भर 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 आता है, उसी प्रकार उनके मुख से भगवान की स्तुति निकली। और ये स्तुतियां जो हैं, इनके चार अलग अलग ग्रंथ बने, या ग्रंथ तो बाद में बने लेकिन चार अलग विभाग बताए जाते हैं। और ये चार जो अलग अलग उनकी कविताएं हैं, इनका श्री वैष्णव संप्रदाय में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि नम्बालवार सबसे ज्यादा योगदान दे सके आलवारों के दिव्य प्रबंधों में। नम्बालवार सबसे महत्वपूर्ण आलवार माने जाते हैं, और अन्य जो भी अलवर हैं वो सब उनके अंश माने जाते हैं। वैसे वेदों के दो भाग हैं, एक है कर्मकांड। कर्मकांड में वैसे संहिता है, ब्राह्मण है, ये अलग अलग भाग हैं कर्मकांड के। और ज्ञान कांड है जिसमें आरण्यक हैं, उपनिषद हैं। तो कर्मकांड और ज्ञान कांड दोनों में भक्ति के बारे में कोई चर्चा नहीं है। वैदिक शास्त्रों में अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत के अलावा विशेष करके भक्ति पे इतना जोर कहीं नहीं दिया जाता है। इसलिए तो हम देखते हैं कि वेदव्यास जी इतने असंतुष्ट थे और नारद मुनि ने आके उनको डांटा और कहा कि आपने भगवान कृष्ण की भक्ति का, उनके सुंदर रूप का, गुणों का वर्णन विस्तार में नहीं किया है, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। और इस आदेश के बाद वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत लिखी। लेकिन इसके अलावा इतने सारे वेद, उपनिषद इत्यादि हैं, उनमें ज्यादा करके कर्मकांड और ज्ञान कांड ही है। तो भक्ति का सार जो है अगर हमें जानना है तो विशेष करके हमें भगवान के भक्तों की कविताएं, उनकी प्रार्थनाएं, उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। तब हम जान सकते हैं कि वास्तव में ये भक्ति क्या चीज है। वास्तव में भक्ति ये वेदों का सार है। और इसलिए जो नम्मालवाल जैसे वैष्णव कविताओं की रचना करते हैं, ये सारे कविताएं वेदों के सार माने जाते हैं। तो इसलिए इनको, इनके जो चार कविताएं थी बड़ी बड़ी, ये ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद के अंदर जो उपनिषद हैं उनके सार माने जाते हैं। तो उनके जो पहले ग्रंथ था या पहले कविता का नाम था तिरुविरुत्तम। तिरु तमिल भाषा में कई अर्थ हो सकते हैं, अच्छा, शुभ, दिव्य, ऐश्वर्यपूर्ण। कभी कभी तिरु लक्ष्मी देवी को भी संबोधित करता है। और विरुत्तम ये भी एक तमिल कविता में एक छंद है। जैसे संस्कृत में कई छंद होते हैं, जैसे अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, तो वैसे तमिल कविता में भी ऐसे कई तरह के छंद होते हैं। उनमें से एक छंद के बारे में हम पहले जब अलवारों की चर्चा करते थे उसमें एक हमने सुना था, इसको अंबादि कहते हैं, अंत आदि, कि एक श्लोक का अंतिम जो अक्षर है और जो उसके बाद वाले श्लोक का पहला अक्षर है वो एक ही है, अंत और आदि, अंबादि। तो ये एक छंद है। उसी प्रकार से विरुत्तम ये भी एक प्रकार का छंद है। श्री वैष्णव में ये समझा जाता है कि ये एक ऐसे घटना का भी वर्णन करता है। और ये घटना है कि मारन या नम्मालवार अपने जीवन की एक घटना का वर्णन कर रहे हैं कि जब उनका भगवान से प्रेम हो गया। बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये। सारे संसार में इतने सारे सिनेमा, उपन्यास, कविता लिखे जाते हैं कि जब एक कोई व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेम करने लग जाता है, शुरू हो जाता है। लेकिन भगवान से जब प्रेम हो गया नम्मालवार का, तो उस घटना का, महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है। इसलिए इस घटना का वर्णन है, इसलिए विरुत्तम का तात्पर्य भी है, ऐसे श्री वैष्णव आचार्य समझाते हैं। और इसका तात्पर्य यह भी है कि ये भौतिक शरीर जो है भगवान को प्रेम करने के लिए एक बहुत बड़ा अड़चन है, क्योंकि भौतिक शरीर के कितने सारे आवश्यकताएं होती हैं, इसको खाना चाहिए, पीना चाहिए, सोना चाहिए, कितने सारे कठिनाइयां हैं जिसकी वजह से ये भगवत प्रेम में अड़चन बन जाती है। तिरुविरुत्तम ये ऋग्वेद के उपनिषदों का सार माना जाता है। इसके 100 श्लोक हैं इस कविता में। और इसकी विशेष बात यह है कि इसके अंदर नम्मालवार माधुरी भाव को प्रकट करते हैं। वास्तव में वैष्णवों में, खास करके जो इस्कॉन के अंदर भी हैं, वो सोचते हैं कि दक्षिण भारत में जितने भी भक्त हैं, जैसे शिव संप्रदाय के होंगे, वो केवल दास के भाव में भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि आलवारों में से भी कई ऐसे थे जो कि माधुर्य भाव में भगवान से प्रेम करते थे। उनमें से सबसे पहले थे नम्मालवार, इसके बाद में तिरुमंगई अलवार भी थे और साथ साथ अंडाल भी थी। इन तीनों ने विशेष करके ये माधुरी भाव को प्रकट किया अपने जीवन में। तो माधुरी भाव ये क्या है? ये वो भाव है जिसमें भक्त अपने आप को नायिका समझता है और भगवान को नायक, प्रेमी और प्रेमिका का रूप का जो संबंध है उसका वर्णन विशेष करके जो वृंदावन के गोपियों ने भगवान कृष्ण के प्रति की थी अपने मन में, ये भावना इसको माधुरी भाव कहते हैं। भगवान को आप तो जानते हैं कि पांच रसों में प्रेम किया जाता है। एक है शांत रस, जहां की सेवा भावना इतनी विकसित नहीं होती है। इसका ऊंचा है दास्य भाव, जिसमें भक्त अपने आप को भगवान का दास मानता है, भगवान को अपना स्वामी या प्रभु। इससे ऊंचा है सख्य भाव, जिसमें भक्त भगवान को अपना सखा या मित्र मानता है, कि एकता की भावना होती है कि भगवान भी हमसे बराबर है। इससे ऊंचा है वात्सल्य भाव, जिसमें भक्त अपने आप को भगवान से श्रेष्ठ मानता है और ये सोचता है कि भगवान, पहले तो उसको भगवान नहीं मान, उनको भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान को अपना बच्चा मानते हैं। जैसे कि माता यशोदा नंद महाराज ने वृंदावन में भगवान कृष्ण के प्रति भावना रखी थी। और अंततः सबसे ऊंचा भाव है माधुर्य भाव या श्रृंगार भाव। माधुर्य भाव इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे मधुर या मीठा है, सबसे गहरा मीठा स्वाद इस प्रेम में है, सबसे तीव्र, सबसे मीठा, सबसे निकट का प्रेम है ये, जिसमें कोई भी इस प्रकार का बंधन नहीं रहता है। अन्य रस में थोड़ा कुछ बंधन रह जाता है, लेकिन यहां लेश मात्र भी कोई बंधन नहीं है। तो ये श्रृंगार या माधुर्य रस कहा जाता है। अब ये जो प्रेम होता है जिसमें भक्त अपने आप को प्रेमिका के रूप में सोचता है और भगवान को प्रेमी या नायिका और नायक, ये ऐसे प्रतीत हो सकता है कि ये एक संसार के काम का एक प्राकट्य है, परंतु ऐसा नहीं है। दो तरह के काम होते हैं। एक है ये संसार का काम जो कि इंद्र तृप्ति के ऊपर आधारित है, जो भौतिक शरीर के ऊपर आधारित है। जब हम इन भौतिक इंद्रियों को, शरीर की इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं तो इसको काम कहते हैं। लेकिन जब यही भावना जो है वो भगवान में केंद्रित हो जाती है तो इस भगवत प्रेम को भगवत काम कहते हैं। तो एक है भौतिक काम, साधारण काम, और दूसरा है भगवत काम, जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है गोपियों के बारे में। तो इसलिए यहां जो संबंध आता है ये कोई साधारण संबंध नहीं है, बल्कि सबसे ऊंचे शुद्ध संबंध का वर्णन है। ये आत्मा के स्तर पर होने के नाते ये जो प्रेम है ये आत्मा की तीव्र पुकार है भगवान के संग के लिए, भगवान को प्रेम करने के लिए, और भगवान इस प्रेम से आदान प्रदान करते हैं। वैसे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि ये प्रेम सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है, ये निंदनीय नहीं है। ये भौतिक जगत में ये काम जो है ये निंदनीय है, क्योंकि ये हमको भगवान की विस्मृति में डाल देता है, परंतु ये भगवत काम सबसे ऊंचा माना जाता है। वैसे हम देखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र और सीता देवी का प्रेम कैसा था, जैसे सूर्य और सूर्य के किरणों का संबंध, बिल्कुल आध्यात्मिक, इसमें कोई भौतिकता का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं था। और कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे भाव में भक्त अपने आराध्य देव, अपने आराध्य जो कि भगवान होते हैं, उन तक संदेश पहुंचाने के लिए कोई ना कोई एक निमित्त कोई दूत बीच में ले लेते हैं, या कोई किसी पक्षी को, एक पशु को, एक व्यक्ति को एक बीच में एक मध्यस्थ बना लेते हैं। जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान को चुना था मध्यस्थ बनने के लिए, हनुमान जी को अपनी अंगूठी दे दी कि जाओ सीता को ढूंढो और ये कहो कि ये मैं श्री राम से आया हूं और ये अंगूठा ये होगा, सबूत होगा। और हम देखते हैं रुक्मिणी देवी ने भी श्री कृष्ण को संदेश भेजा एक ब्राह्मण के माध्यम से। गोपियां इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी भागवत में करते हैं कि वो इस तरह से बोला करती थी कि कोई भौतिक व्यक्ति जो कि भक्ति के रीति से परिचित नहीं है वो सोचेगा कि ये पागलपन है। वो पक्षियों से बात करते थे, पशुओं से बात करते थे, पेड़ों से, पौधों से बात करते थे, और कभी आसमान से बात करते थे, पहाड़ों से बात करते थे, और उनको कहते थे कि जाओ कृष्ण को कहो ऐसे कुछ हमारा संदेश दे दो। और कोई भंवरा है तो भंवरा आ जाता तो पूछते क्या तुम संदेश लाए हो क्या कुछ। तो ये प्रकार एक दिव्य भाव पागल, दिव्य पागलपन जो है ये भगवत काम का सबसे ऊंचा एक प्राकट्य है। तो ऐसी इस तरह की भावना यहाँ पर नम्मालवार अपने तिरुविरुत्तम में प्रकट करते हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि वे विरह की भावना प्रकट करते हैं, ठीक वैसे कि जैसे वृंदावन में भी प्रकट किए थे गोपियों ने। विरह में भक्त हमेशा भगवान को पुकारता है, वो मिलन की अपेक्षा करता है कि कब भगवान मेरे साथ में आएंगे। और ये विरह वास्तव में मिलन के मिठास को बढ़ाता है, क्योंकि मिलन जब काफी समय के बाद होता है तो उस समय वो इच्छा इतनी बढ़ी हुई होती है कि जब मिलन फिर उसके बाद में हो जाता है तो उसको उसमें ज्यादा आनंद आता है। जिस तरह से जब आदमी का पेट भरा हुआ रहता है तो भोजन खाने में उतना आनंद नहीं आता, लेकिन जब आदमी बहुत भूखा होता है और उसके बाद उसको अगर अच्छा कोई फिश मिलता है तब उस चीज को खाने में उसको बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो उसी प्रकार से भगवान से जब विरह हो जाता है और उसके बाद जब मिलन होता है तो वो मिलन का स्वाद जो है वो आनंद, वो प्रेम, वो और भी बढ़ जाता है। इसको भगवान जानबूझकर अपने भक्तों को कभी कभी विरह में डालते हैं ताकि उनकी प्रेम की तीव्रता और भी ज्यादा बढ़ जाए। भौतिक जगत में देखते हैं कि कभी कभी शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त करने के बाद भी कहीं अणुमात्र कोई अनर्थ हमारे हृदय में रह जाए, लेकिन भगवान चाहते हैं कि ये अणुमात्र भी कोई कलमश हमारे हृदय में नहीं रहे, तो उस अणुमात्र कलमश को भी निकालना चाहते हैं। तो कभी कभी अपने भक्तों को ऐसे विरह में डालते हैं, ऐसे कष्ट में डालते हैं जिससे कि वो भगवान को जोर से पुकारे। भक्त निराश हो जाता है कि अरे प्रभु अभी आप अपने हमारे सामने थे, अब कहां चले गए अचानक। और उस विरह के अग्नि में उनके थोड़े लेश मात्र जो भी क्लेश होते, जो मल होता है वो धुल जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने यही भावना को प्रकट किया, हाँ कृष्ण कह के वो इधर उधर घूमते थे विरह की भावना में। उनको लगता था कि अभी हमने कृष्ण को देखा, अभी कृष्ण आए, जब कृष्ण के पीछे जाते थे कृष्ण गायब हो जाते थे। तो इस तरह से विरह की भावना और तीव्र होती जाती थी। इसको विप्रलंभ कहते हैं, विरह, विप्रलंभ और मिलन दोनों की भावनाएं। तो हम देखते हैं कि आलवारों में दक्षिण भारत श्री संप्रदाय में भी ये विरह की भावना, विप्रलंभ सेवा, इसका वर्णन नम्मालवार करते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके मुख से ये वर्णन आती है, भाव प्रकट होता है। और इसमें विरह भावना में शरीर में क्या परिवर्तन होता है और मन में किस तरह के विकार आते हैं उनका भी वर्णन है यहाँ पर। जैसे राधा रानी एक भ्रमर के साथ बात करती है गोपियों में, इसको भ्रमर गीत कहते हैं, जैसे वेणु गीत है, गोपी गीत है, भ्रमर गीत भी है। तो राधा रानी एक भ्रमर से, एक भंवरे से चर्चा कर रही, बातचीत कर रही है, अरे भंवरे तुम कहाँ से आए, क्या है, कहाँ से कहाँ जाओ, जाके संदेश दे दो, बहुत कुछ चीजें बात करती है। तो इस प्रकार से इस भावना में व्यक्ति जो है चाहे वो
पुरुष हो या स्त्री हो, अपने आप को स्त्री मानता है क्योंकि भगवान तो केवल पुरुष है। तो ऐसा क्यों? ये कोई भ्रांति में डालने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पुरुष और स्त्री होना ये केवल इस भौतिक शरीर का पहचान है, लेकिन आत्मा वास्तव में तो स्त्री है ना पुरुष। आत्मा को एक जीवन में स्त्री का शरीर मिलता है, हो सकता है अगले जन्म में उसको पुरुष का शरीर मिले। तो ये स्त्री और पुरुष शरीर ये आत्मा की सही पहचान नहीं है। सचमुच पुरुष जो है वो केवल भगवान कृष्ण है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो क्योंकि केवल भगवान ही पुरुष है, भोक्ता है, और अन्य सभी भोग्य हैं, इसलिए आत्मा भी स्त्रीलिंग है, आत्मा भी भोग्य वस्तु है, वो भी प्रकृति है जो कि स्त्रीलिंग है। इसलिए अगर कोई पुरुष देह में होकर भी कोई भक्त अपने आप को एक नायिका समझता है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, भ्रांति करने की कोई बात नहीं है कि पुरुष का देह है तो वो कैसे बोलते हैं कि एक स्त्री के रूप में कैसे बोलते हैं। तो इसको हमें सही दृष्टि से समझना चाहिए। इसके लिए आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि ऐसे जब कोई व्यक्ति पुरुष अपने आप को भगवान के संबंध में एक स्त्री रूप में देखता है। हा? शिव जी कभी रासलीला में शिव जी को तो वैसे गोपी का शरीर धारण करना पड़ा। गोपी का शरीर धारण करने के पहले उनको प्रवेश नहीं था उस रासलीला में। जब वो फिर जाके उन्होंने कुंड में स्नान किया तब उनको गोपी का शरीर मिला। फिर वह रासस्थली के बाहर मंदिर है अभी गोपेश्वर महादेव। तो शिव जी जो कि गोपी के शरीर में है वो गोपेश्वर, लेकिन पुरुष का देह रहते हुए स्त्री की भावना रहना, लेकिन साधारण भौतिक स्त्री पुरुष का नहीं, भगवान के प्रति। कोई उदाहरण? दंडकारण्य के ऋषि, दंडकारण्य के ऋषि ये तो सब पुरुष थे, लेकिन जब श्री राम को उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि हमको वही उसी तरह से प्रेम करना है उनसे जैसे सीता देवी कर रही है, उसी भाव में प्रेम करना है क्योंकि श्री राम इतने आकर्षक हैं। लेकिन श्री राम उनकी बात समझ गए, उन्होंने कहा कि इस अवतार में मैंने एक पत्नी व्रत लिया है इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगले अवतार में मैं जब आऊंगा तो उस समय आप गोपियां बन के मेरी सेवा कर सकते हैं, माधुर्य भाव में मुझसे प्रेम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पुरुष स्त्री का जो अंतर होता है इसको हमें समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। तो ये विशेष बात है कि नम्मलवार में इस तिरुविरुत्तम में इस भावना को व्यक्त किया कि क्या बीतता है एक शुद्ध भक्त के ऊपर जो कि माधुर्य भाव में है। ये विरह की पीड़ा कितनी तीव्र होती है, बहुत ही दृष्टि से लगता है कि ये एक दुख है। जैसे ब्रजवासियां हमेशा कृष्ण की विरह में रोया करते थे, दिन रात रोया करते थे, और उनको आश्चर्य होता था कि अभी तक ये जीवित है। इसलिए वो सोचते थे कि हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर वास्तव में कृष्ण के प्रति प्रेम होता तो हमने कब का प्राण त्याग दिया होता। लेकिन अभी तक हमारा प्राण है इसका मतलब हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं है। दिन रात ऐसे दुख की अवस्था में रहते थे और संदेश द्वारका तक भी पहुंच गया। और इसलिए एक बार द्वारका में कृष्ण भगवान ने उद्धव को भेजा, बलराम को भेजा कि जाओ उनको जरा सांत्वना दे दो कि मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। और जब स्वयं कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी ने द्वारका के निवासियों का, वृंदावन के निवासियों का, विशेष करके गोपियों के विरह भावना के बारे में सुना तो उसका क्या हुआ? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का जो रूप है वो प्रकट हो गया। उनकी आंखें बड़ी 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 हो गई, उनके हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए, उनका शरीर ऐसे हो गया विरह भाव। तो जगन्नाथ भगवान कौन है? कृष्ण है, लेकिन विरह की भावना में। ये कैसे प्रेरणा मिली इस रूप को आने के लिए? जब उन्होंने वृंदावन के भक्तों का विरह भावना के बारे में सुना तो उनको भी विरह होने लगा ज्यादा से ज्यादा। और तो ये जो बाहरी दृष्टि से लगता है कि बहुत बड़ा दुख है, वास्तव में दुख नहीं है, सबसे ऊंचा आनंद है।
एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक तत्व ये है कि भौतिक जगत में दुख तो दुख है, लेकिन जो सुख है या लोग जिसको सुख कहते हैं वो भी दुख है। तो चाहे वो सुख हो या दुख, यहां दोनों चीजें भौतिक जगत में दुख है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर में, भक्ति के स्तर में आनंद तो आनंद है जब भगवान का दर्शन होता है उदाहरणार्थ, लेकिन भौतिक आध्यात्मिक स्तर में, भक्ति के स्तर में जो विरह होता है और बहुत पीड़ा होती है, तथा कथित ऐसा लगता है कि दुख होता है, लेकिन वो दुख भी सबसे ऊंचा आनंद है। तो भक्ति के स्तर में कोई वस्तु दुख लगे या सुख, वो आनंद ही है। तो भौतिक जगत में सब कुछ दुख है और भक्ति के स्तर में सब कुछ आनंद ही आनंद है। तो नम्मालवार ने अपने इस त्रिविरुत्तम के 100 श्लोकों में से ऐसे प्रार्थनाएं किए। अगली बार शायद, अगर समय में, अगली बार इन थोड़े श्लोकों का वर्णन करेंगे, क्या भाव उन्होंने प्रकट किया, क्या क्या कहा उन्होंने। उनके अगले कविता का नाम है तिरुवाचिरियम। वैसे तमिल भाषा में और एक छंद है जिसको असरियप्पा कहते हैं। अलग अलग तरह के छंद होते हैं, असरी या असरियप्पा, तो इसलिए नाम आया तिरु और वाचिरियम। और इसमें 70 श्लोक के बराबर है और ये यजुर्वेद का सार माना जाता है। यजुर्वेद के अंदर जो उपनिषद हैं उनके सार माने जाते हैं ये। इस कविता में नम्मालवार वर्णन करते हैं भगवान के सुंदर रूप का, उनके वैभव का, उनके व्यक्तित्व का, और किस तरह से भगवान की प्राप्ति की जाती है, और हमारे अंतिम लक्ष्य का वर्णन क्या है, प्रयोजन क्या है, इन सब चीजों का वर्णन वो इस कविता में करते हैं। इसके आगे उन्होंने जो तीसरी कविता की रचना की उसका नाम है पेरिय तिरुवंदाली। पेरिय मतलब जो बहुत महान है तमिल भाषा में, बराबर है ना, पेरिय। पेरिय मतलब बहुत महान, और अंदादी, इसके बारे में हमने वर्णन किया ही है कि ये भी एक छंद है जिसमें एक श्लोक का अंतिम अक्षर और उसके बाद वाले श्लोक का पहला अक्षर एक ही होता है, पेरिय तिरुवंदाली। और इसमें हर एक श्लोक जो है ये मारन के या नम्मालवार के प्रेम को व्यक्त करता है भगवान के प्रति, और उस प्रेम में जो उनके हार हुए, जो कष्ट हुए, जो उनको आनंद मिला, जो दुख मिला, उन सब चीजों का वर्णन है। तो हम पूछेंगे कि भक्ति में हार क्या चीज है, नम्मालवार को किस तरह का हार हुआ, किस तरह का कष्ट हुआ, किस तरह का दुख हुआ। तो कभी कभी भगवान उनके सामने प्रकट होते थे, और जब होते थे तो आनंद आता था, बहुत आनंद, और अचानक थोड़े क्षणों के बाद भगवान ओझल हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे। तो उस समय उनको बहुत पीड़ा होती थी और बोलते थे भगवान आप रहिए रहिए, जाइए मत, दर्शन देते रहिए, लेकिन भगवान चले जाते, अदृश्य हो जाते। तो फिर अपने आप को बहुत दुखी मानते, अपने आप को बहुत ही दुर्भाग्यशाली मानते, तो मानते कि मेरी हार हो गई, फेल हो गया मैं, भगवान मेरे दर्शन के सामने नहीं, दर्शन नहीं दे पाए, मेरे आंखों के सामने नहीं रहे। तो जो भावनाएं उनकी होती थी जब भगवान का दर्शन होता था, या जब भगवान ओझल हो जाते थे, जब उनके ऐसे दुख के समय में, जो भी उनके मन के हृदय के विचार है वो सब व्यक्त करते हैं भगवान नम्मालवार। तो खास करके जो भगवान के प्रति तीव्र एक लोभ है, उनको प्राप्त करने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए जो एक ऐसे तीव्रता है, उसको व्यक्त इस पेरिय तिरुवंदादी में उन्होंने किया है। तो भक्तों के जो पुकार होते, जो तरस होता है भगवान के लिए, यही एकमात्र उनकी योग्यता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। श्री रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि जब तक हमारे अंदर ये लोभ नहीं आएगा, तब तक हम ये ऊंचे कृष्ण रस को, कृष्ण भक्ति रस को नहीं प्राप्त कर सकते। कृष्ण भक्ति रस भावता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कृष्ण भक्ति रस
ये वृंदावन का जो कृष्ण भक्ति का रस है, सबसे मीठा ऊंचा रस, अगर आपको चाहिए भाविता मति, अगर आपकी मति ऐसी है कि आपको ये चाहिए, क्रियताम, उसको जल्दी से खरीद लीजिए। अगर कहीं बिक रहा है, क्रियताम यदि कुतः, अगर कहीं भी बिक रहा है तो लभ्य, तो उसको जल्दी से प्राप्त कर लो, खरीद लो, जितने भी कीमत आए खरीद लो उसको। लेकिन कीमत क्या है, कितने पैसे लगेंगे उसके लिए, क्या देना पड़ेगा इसके बदले में। तत्र लौल्यम, लौल्यम मतलब लोभ, जितना तीव्र लोभ होगा भगवान को पाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, वही लोभ। तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम, ये एकमात्र मूल्य है, इसके लिए कीमत है। जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते, कोटि कोटि सुकृति पुण्य करने से ये नहीं प्राप्त होगा जब तक ये तीव्रता, ये लौल्यम नहीं है। तो यहां पर महान वैष्णव जैसे तो नम्मालवार हैं, इनकी प्रार्थनाओं में, इनकी स्तुतियों में हम ऐसे एक लोभ देख सकते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसे कोई अगर ज्यादा भौतिक दृष्टि से लोभी आदमी है, वो बहुत पैसा कमाना चाहता है, कितना लोभी है, कितना वो तीव्रता से चाहता है कि मेरे को पैसा मिले, ये करे, क्या नहीं करता है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त करने के लिए। अपने परिवार के वालों को भी अलग कर देता है, उनसे झगड़ा करता है, कभी कभी खून भी हो जाता है, केवल पैसे के लिए, पैसे के लोभ के लिए। तो हम कई उदाहरणों में भौतिक लोगों से हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं कि जितना उत्साह, जितना लोभ उनको भौतिक क्षेत्र में है, उतना ही उत्साह और लोभ हमने भगवत भक्ति के क्षेत्र में लगा दिया तो हमारा कितना फायदा होगा, हम बहुत जल्दी शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो यहां हम देखते हैं नम्मालवार की तीव्रता, इच्छा, उनका लोभ। उनकी चौथी कविता है तिरुवायमोली, तिरुवायमोली ये उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उनकी कविता मानी जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा श्लोक हैं, करीब करीब 1102 श्लोक हैं। तिरुवायमोली इसमें वास्तव में 10 विभाजन हैं, और हरेक विभाजन में 11 श्लोक हैं, और कई कई 12 और 13 भी हैं, लेकिन ज्यादातर 11। और इन 11 श्लोकों को, हरेक श्लोक को पाशतम कहते हैं। और इस तरह से तिरुवायमोली में ये जो कि सामवेद का एक सार माना जाता है, सामवेद में जितने भी सारे उपनिषद हैं इनके सार माने जाते हैं, और इसमें नम्मालवार ने भी उसी तरह की भावना व्यक्त की है जो कि उन्होंने तिरुविरुत्तम में किए हैं, नायिका और नायक की भावना। वैसे वायमोली इसका मतलब है जो चीज बोली जाती है, तिरु मतलब दिव्य, तो तिरुवायमोली मतलब दिव्य शब्द, दिव्य ध्वनि। और इस ग्रंथ में, इस कविता में जितने भी श्लोक हैं वो शुद्ध भगवत काम से प्रेरित हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, और इन श्लोकों में भगवान के सारे वैभवों का, उनके सारे यश का, उनका गुणगान किया गया है। और इसमें सार यही है, वो बता रहे हैं कि भगवान जो कि परतत्व है वो हमारे लिए प्राप्त करने के लिए वस्तु है, प्राप्य है, और जो जीव है वो है प्राप्ता, जो उस प्राप्य को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तीसरा है जो साधन है उसको प्राप्त करने के लिए, प्राप्युपाय, प्राप्ता प्राप्त के लिए जब प्राप्त करता, जब कोशिश करता है उसको प्राप्त उपाय कहते हैं, जो साधना है। और चौथी बात है फल, तो कृष्ण प्रेम जो कि हमको प्राप्त हो सकता है। और फिर और एक बात है प्राप्ति निरोधी, जो कि इस हमारे अंतिम फल को प्राप्त करने में अड़चन आते हैं, कष्ट आते हैं, तो इन 5 तत्वों को जो कि विशिष्टाद्वैत के खंभे हैं, स्तंभ हैं, इनका वर्णन इस तिरुवायमोली में है। इसको वास्तव में तमिल वेद कहा जाता है। सारे जो आलवारों के कविताएं हैं कुल मिलाकर 4000 हैं, नालायर दिव्य प्रबंधम कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। नालायर मतलब 4000, प्रबंधम मतलब संग्रह, इन सारे दिव्य कविताओं का, श्लोकों का संग्रह। उनमें से ये सारे जो श्लोक है, हमको तमिल वेद माने जाते हैं, लेकिन विशेष करके जो नम्मलवार के तिरुवाय मोली है उसको खास करके तमिल वेद माने जाते हैं, ऐसे शीर्ष प्रदाय के आचार्य भी मानते हैं। तो नम्मलवार के ये चार महत्वपूर्ण कविताएं हैं जो कि नालाय दिव्य प्रबंधम में भी हैं। दूसरी ओर जो मधुर कवि आलवार हैं उन्होंने केवल 11 श्लोकों की रचना की, ये भी नालाय दिव्य प्रबंधम में है, लेकिन इन 11 श्लोकों में उन्होंने भगवान का गुणगान नहीं किया। तो क्या किया, केवल अपने गुरु नम्मलवार का की स्तुति की। अगर इन 12 अलवारों में हर एक में कोई ना कोई विशेषता ये है, तो मधुर कवि अलवार में विशेषता ये है कि उन्होंने गुरु भक्ति क्या है ये दिखाया। एक कविता में वो कहते हैं कि ठीक है भगवान रंगनाथ तो बहुत मीठे हैं, मधुर हैं, लेकिन उनसे ज्यादा मधुर है मेरे नम्मलवार। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु की स्तुति इन 11 श्लोकों में की है, नम्मलवार के 10 विविध गुणों का वर्णन किया है, और ये भी नालायिर दिव्य प्रबंधम में आते हैं। जब स्वयं भगवान नारायण और विष्णु ने नम्मलवार को दर्शन दिया था, जिसका वर्णन इस प्रवचन की शुरुआत में किया था, गरुड़ के ऊपर सवार होकर, और उस दौरान उनके मुख से ये चार सुंदर तरह तरह की कविताएं निकली, केवल यही एक दर्शन नहीं हुआ उनको, और कई विशेष दर्शन हुए और कई विशेष व्यक्ति उनको दर्शन देने के लिए आए। एक तो नित्य सूरी वैकुंठ के निवासी, श्वेत द्वीप के निवासी, श्वेत द्वीप मतलब भगवान श्री विष्णु का धाम वैकुंठ। जितने भी महत्वपूर्ण विष्णु दूत हैं जो भगवान के भक्त हैं वैकुंठ लोक से, वो भी सब एक के बाद आते थे उनको दर्शन देने के लिए। तो नम्मलवार कहीं गए नहीं, एक जगह बैठ के सारे वैकुंठ का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया। और इतना ही नहीं, विशेष करके तिरुवाई मोई में नम्मलवार कम से कम 33 ऐसे अर्चा विग्रहों का वर्णन करते हैं जो कि ऐसे मंदिरों में हैं जो कि तिरुनगरी के पास आसपास में थे, और 3 ऐसे भी थे जो कि उत्तर भारत में थे, और ऐसे भी कई विग्रहों का रूपों का वर्णन करते हैं जो कि परंपर वैकुंठ में थे। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि नम्मलवार उस इमली वृक्ष के नीचे से कभी दूर गए नहीं, बाहर गए नहीं, केवल वहां पे अपने 35 साल रहे हैं। तो उन्होंने इन सारे तीर्थ स्थानों में जो भगवान की मूर्ति है उनका दर्शन कब किया, कब उन्होंने देखा इन सारे मूर्तियों को। अब 33 अलग अलग मंदिरों की मूर्तियों का वर्णन बड़े विस्तार से, और विशेष करके तिरु वेंकटम है, उनका केवल इस एक विग्रह के लिए उन्होंने 55 या 52 श्लोकों की रचना की। तो कई विग्रहों के बारे में उन्होंने 2-4 श्लोक कहे, कई विग्रहों के बारे में जैसे तिरु वंकट कई श्लोक कहे, तो बड़े विस्तार में सुंदर रूप से उन्होंने इन सारे अर्चा विग्रहों की वर्णन किए, विशेष करके जो मंदिर उनके निवास स्थान के पास थे और थोड़े जो कि काफी दूर भी थे। तो कैसे संभव है, वो तो गए नहीं वहां से। तो इसका उत्तर ये है कि जितने भी सारे अर्चा विग्रह हैं वो सब दर्शन देने के लिए नम्मलवार के पास आए। नम्मलवार को उन्होंने उनके दिव्य दृष्टि में आके दर्शन दिए, दूसरे नहीं देख सकते थे उनको, केवल इन अर्चा विग्रहों ने आकर नम्मलवार को दर्शन दिया। अब ऐसे क्यों दिया, ऐसे बताया जाता है कि नम्मलवार जब भगवान का दर्शन करते, वैकुंठ के विष्णु नारायण का हरि का दर्शन करते, तो वो क्षणिक होता था, थोड़े क्षण के बाद भगवान ओझल हो जाते थे। जब ओझल हो जाते थे तो नम्मलवार बहुत उदास हो जाते थे, बहुत दुखी हो जाते थे कि भगवान हमसे दूर से लगे वापस। तो उस समय उनको सांत्वना देने के लिए इन अलग अलग मंदिरों के अंदर जो भगवान की मूर्ति हुआ करती थी वो उनको दर्शन दिया करते थे, खास करके 33 उनका दर्शन उन्होंने अपने अंतःकरण में अपने दिव्य चक्षु से किए। और जैसे जैसे उस विग्रह के रूप को देखते अपने अंतःकरण से, जो और कोई नहीं देख सकता था, तो तुरंत उनके मुख से उस विग्रह की उस सुंदर रूप की स्तुति निकलती, वो बोलना शुरू हो जाते, स्तुति करते उनका सुंदर रूप का, उनके गुण का। और उसमें मधुर कवि आलवार उनके पास पे बैठे हुए होते थे, वो जल्दी जल्दी उसको लिख देते थे। तो इस प्रकार से उनके सारे विग्रहों का वर्णन जो है
वो मधुर कवि जो कि उनके सेवक रहे उनके द्वारा हो गया। तो फिर प्रश्न ये आता है कि नंबरवार में केवल अमुक मूर्तियों का वर्णन क्यों किया, केवल ये मूर्ति वे मूर्ति वो क्यों नहीं वो क्यों नहीं। तो इसके बारे में श्री वैष्णव समझाते हैं कि इसका कोई उत्तर नहीं, उत्तर यही है कि उन विग्रहों ने इच्छा की हमको दर्शन देना है, इसलिए वो आ गए और उन्होंने आकर इनको ऐसे दर्शन दिया। इस प्रकार से नंबरवार ने एक स्थान में रहते हुए वो कहीं नहीं गए, वहां से कोई दर्शन के लिए परिक्रमा के लिए यात्रा के लिए कहीं नहीं गए, भगवान को देखने के लिए वो नहीं गए, भगवान उनको दर्शन देने के लिए आ गए। न केवल वैकुंठ से लेकिन अलग 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 उनके वैकुंठ लोक के निवासी भी आए, विष्णुदूत आए, साथ साथ भगवान के अर्चा विग्रह के रूप ये भी यहाँ पर आए उनको दर्शन देने के लिए। इस भाव में नम्मालवार ने अपना सारा समय बिताया। तो हम समझ सकते हैं कि इसलिए यही कारण है कि नम्मालवार को सबसे महत्वपूर्ण आलवार माना जाता है। अगले एकादशी को हम उनके तिरुवायमोली और अन्य कविताओं से थोड़े थोड़े अंश सुनने का प्रयास करेंगे। केवल कहानियां सुनना ये अच्छी बात है क्योंकि ये भक्तों के संबंध में है, भगवान के संबंध में है, इससे बड़ा आनंद आता है, नींद नहीं आती है। परंतु उनकी प्रार्थनाएं सुनने से हमको उतना ही लाभ होगा, बल्कि और हमको उसका रस बढ़ेगा कि कैसे कैसे प्रार्थनाएं उन्होंने किए। तो अगली बार कोशिश करेंगे उनकी थोड़ी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। नम्मालवार के साथ ऐसे कई चमत्कार भी हुए जिनका एक लीला का वर्णन आज करेंगे। छोटी सी लीला है। नम्मालवार ताम्रपर्णी नदी के दक्षिण तट पर रहा करते थे। इस नदी के उत्तर के तट में एक योगी रहा करते थे। उस योगी के पास एक कुत्ता रहा करता था और ये कुत्ता हर रोज ताम्रपर्णी नदी को पार करके तैरते हुए जाकर दक्षिण तट में आ जाता था और यहाँ से जितने भी वैष्णवों का उच्छिष्ट रहता था, थोड़ा बहुत इधर उधर गिरा हुआ रहता था वो भी, वो लेकर वो खाकर फिर वापस तैर के उस योगी के पास उत्तर तट में चले जाता था। तो ऐसे काफी समय तक चलता रहा। एक बार ये हुआ कि ये कुत्ता वापस आया नहीं तो योगी काफी चिंतित हो गए। तो नदी के तट पर आए देखने के लिए कहा है, फिर देखा कि यह कुत्ता आ रहा है, लेकिन उस समय पानी में काफी बाढ़ आ गया था और ये कुत्ता बीच में तैर रहा था और पानी के लहरों की वजह से बाढ़ की वजह से वो कुत्ता डूब रहा था, तैरने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। ये योगी उस तरफ फिर कुछ कर नहीं पाए और उनकी आंखों के सामने वो कुत्ता डूब गया पानी में और डूबने के बाद फिर उसका शरीर ऊपर आया, तैरने लगा जल के ऊपर। और उस क्षण में उस योगी ने एक अद्भुत दृश्य देखा कि उस कुत्ते के सर के ऊपर से अचानक एक छोटा सा विस्फोट हो गया और उसकी आत्मा निकली हजारों हजारों प्रज्वलित दीपों के समान, सूर्यों के समान प्रकाशमान, और वो सीधे ऊपर ऊपर की ओर निकल गई, माने कि वो सीधे वैकुंठ की ओर जा रही है। तो फिर वो योगी के मुख से एक सुंदर स्तुति निकली नम्मालवार की और वहां रहने वाले आलवारों की वैष्णवों की, कि वो प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरा तो भूत जैसा अस्तित्व है, इससे भला कि मैं इस कुत्ते के जैसा रहूं, क्योंकि जो नम्मालवार और अन्य वैष्णवों के उच्चिष्ट को ग्रहण करके वो सीधे वैकुंठ में चले जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैष्णवों का संग, वैष्णव का उच्चिष्ट वगैरह, इससे कितने शक्तिशाली चीजें होती हैं। तो भक्तों के संग में रहकर हम भगवान कृष्ण की सेवा करते करते अपना जीवन बिता सकते हैं और अंत में हम भी भगवान के धाम को प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति में कोई भौतिक सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जब एक कुत्ता भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता। उस कुत्ते को इतनी श्रद्धा थी कि वह हर रोज नदी पार करके आके वैष्णव का उच्छिष्ट खाके जाता था। एक कुत्ते को अगर श्रद्धा हो सकती है, ये इतनी तपस्या कर सकता कि हर रोज तैर के जाना नदी को और आना वापस, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। हमको भी करना चाहिए, मनुष्यों को भी करना चाहिए। मनुष्य को भी थोड़ा कष्ट लेना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। मनुष्यों के अंदर भी, भक्तों के अंदर भी वही श्रद्धा होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम देखते हैं कि उनकी कृपा से कुत्ते का उद्धार हो गया क्योंकि शिवानंद सेन ने उसके ऊपर कृपा की थी, जबकि सारे बंगाल के भक्त बंगाल से जगन्नाथपुरी में जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए, और एक कुत्ता उनके साथ साथ चलता आया और शिवानंद सेन उसको खिलाते थे, उसकी रक्षा करते थे, उसको नौके में भी साथ में लेते थे। एक बार उन्होंने देखा कि ये कुत्ता नहीं है, गायब हो गया है, तो आश्चर्यचकित हो गए। बाद में उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस कुत्ते को उनके अपने कर कमलों से प्रसाद खिला रहे हैं, तो उस कुत्ते का उद्धार हो गया। बाद में शिवानंद सिंह को पता चला कि ये कुत्ता सीधे भगवान के धाम में वैकुंठ में चला गया है। तो देख सकते हैं कि कितने सारे उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में, इतिहास में, भक्तों के इतिहास में, कि पशु पक्षियों ने भी भगवान के धाम की प्राप्ति की है, वो भी शुद्ध भक्ति कर पाए। आपको उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे मनुष्य योनि में न रहते हुए ऐसे कोई किसी ने भक्ति की है? जटायु, जटायु को पक्षी का एक शरीर था लेकिन वो शुद्ध भक्त बन गए, भगवान के शरण में थे। और गजेंद्र, गजेंद्र को भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, हाथी का शरीर था। और खार, वो जो स्क्विरल था, रामायण हिंदी में क्या बोलते हैं स्क्विरल को? खार, खार ही बोलते हैं। तो प्रभु रामचंद्र ने उसको उठाया, उसने भी अपने अपने छोटे छोटे टांगों से रेती के कणों को डाल के सेतु बांधने में मदद किया, और उनकी उनका योगदान जो है वो अन्य वानरों के योगदान के बराबर था। तो आपने वानरों का नाम नहीं लिया, हनुमान जी इतने सारे वानर थे, केवल वानर, अष्ट भालु भी थे जैसे जाम्बवान। तो ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं, और वृंदावन के सारे पशु पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी सब भक्त हैं, सब वैष्णव हैं। तो भक्ति दिव्य चीज है, कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। तो हमारे लिए ये एक बहुत अनमोल अवसर है, हमें न केवल मनुष्य देह मिला है परंतु हमें भक्तों का संग मिला है, भक्ति करने की संधि मिली है। तो इसका पूरा पूरा फायदा हमको उठाना चाहिए, और इससे इसी जीवन में भगवान के धाम में वापस जाने का निर्णय लेना चाहिए। इतना गंभीर होना चाहिए हमको भक्ति में, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि चलो बहुत समय है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। वैसे भी गीता में भगवान ने कहा है कि चलो भक्ति नष्ट नहीं होती है, नहीं, हमको ठान लेना चाहिए कि हमको इसी जन्म में जाना है, इसी जन्म में हमको इतनी शक्तिशाली भक्ति करनी है, इतनी तीव्रता से हमको इच्छा रखनी चाहिए, उतना दृढ़ विश्वास निर्माण करने का प्रयास हमको करना चाहिए। तो ऐसे आलवारों की कथाएं, इनकी लीलाएं सुनने से हमको अगर प्रेरणा मिले भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए, तो फिर ये श्रवण करना हमारे लाभदायक है। तो इन लीलाओं से न केवल हमारे आध्यात्मिक मनोरंजन के लिए सुनना चाहिए, लेकिन इन कथाओं से, लीलाओं से, इन सब चीजों को हमें सीखना चाहिए और प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। नम्मालवार की जय, मधुर कवि आलवार की जय, गौर प्रमानंबे, हरि हरि बोल। कि नम्मालवार कभी उस वृक्ष से बाहर गए नहीं, कभी कोई गुरुकुल में, पाठशाला में, स्कूल कॉलेज में गए नहीं, तो कहां से उन्होंने सीखा ये सब? भगवान के बारे में सीखना है तो हम गुरु के पास जाते हैं, लेकिन नम्मालवार ने किन से सीखा? स्वयं भगवान उनको सिखाने के लिए आ गए, अंदर से ही भगवान ने उनको पूरा ज्ञान प्रदान कर दिया। ऐसे कई शुद्ध भक्तों में देखा जाता है कि भौतिक दृष्टि से वो अनपढ़ होते हैं, कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गए होते हैं, जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु महाराज, वो कभी स्कूल कॉलेज गए नहीं, परंतु बहुत बड़े विद्वान थे, सारे शास्त्रों को का ज्ञान था उनको। उस प्रकार से बताया जाता है कि नम्मालवार भी सारे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, इनका सार उनको मालूम था, पूरा ज्ञान उनको था, क्योंकि अंदर से ही भगवान ने उनको ऐसा ज्ञान प्रदान कर दिया था। इसका मतलब है कि भक्ति संपूर्ण है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के ऊपर निर्भर नहीं है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम सोचें कि केवल फिर हमको कोई प्रभुपाद की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो नम्मालवार नहीं पढ़े तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं, हम नम्मालवार नहीं है, हम विष्णुदेव के अवतार नहीं है, हम तो बद्ध जीव है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार ये शरीर हमको प्राप्त हुआ, इसलिए हमको प्रभुपाद की किताब बहुत अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
कर सकते हैं
भक्ति में तीव्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तीव्र इच्छा से, हम बोलेंगे कि भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा नहीं है तो तीव्रता कैसे लाया जाए? तो भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा के लिए तीव्र इच्छा रख सकते हैं, है ना। अगर हमने सोचा कि भगवान मुझे मेरे मन में आपकी सेवा करने की तीव्र इच्छा नहीं है, कम से कम आपकी सेवा करने की इच्छा तो मेरे मन में आपको दे दीजिए, ये तीव्र इच्छा। साथ साथ ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनकी इच्छा तीव्र है, और अपने पूर्ण शक्ति को, बुद्धि को, बल को, मन को, सबको केंद्रित करके एकाग्र चित्त से हमको पूरे तरह से भगवान की सेवा में लगना चाहिए। केवल मानसिक स्तर में नहीं लेना चाहिए, रहना चाहिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बस कर देना चाहिए। ठीक है। नंबर वन ने जितने भी सुंदर स्तुतियां वर्णन किए भगवान के रूप का इत्यादि, कई ऐसे थोड़े बहुत श्लोकों का अनुवाद हम अभी बार देखेंगे। थोड़े ऐसे श्लोक, सिलेक्टेड श्लोक ऐसे लेंगे जिसमें हम सुनेंगे कि नम्मालवर ने कैसी स्तुति की भगवान की, कौन सी प्रार्थनाएं उन्होंने अर्पण किए भगवान के सामने। अलवर जब भगवान की स्तुति कर रहे थे तब मधुर कवि लिख रहे थे, तब क्या उनको भी दर्शन मिला क्या, ऐसे वर्णन नहीं आता है। नम्मालवर देख रहे थे, उनके मुख से निकल रहे थे शब्द, उनको मुख शब्दों को सुनकर वो लिख रहे थे। हमारा तर्क तो ये, अगर उनको दर्शन भी मिला होता वो कि लिखते कैसे, वो भी ऐसे ही रह जाते देखते हुए। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण।
इतने उच्च स्तर पर थे नम्मालवर, तो उनको ये मनुष्य शरीर धारण करना पड़ा क्या, हमारे सिखाने के लिए, हमको सिखाने के लिए, या
बिल्कुल
ऐसा उनका कुछ
केवल हम सबको सिखाने के लिए, एक आध्यात्मिक भक्ति की संस्कृति आने वाले पीढ़ियों के लिए बनाने के लिए। ये तो नित्य सिद्ध है, भगवान के धाम से भगवान कभी कभी अपने नित्य पार्षदों को भेजते हैं ताकि वो यहाँ प्रचार कर सके, अपने उपदेशों से, अपने उदाहरण से, अपने भक्ति से वो एक भक्ति का वातावरण बनाए और दूसरों को भक्ति में आने के लिए प्रेरित करें और मार्गदर्शन करें। तो जीवन या जीवबद्ध जीवों के उद्धार के लिए भगवान कई उपाय ढूंढ निकालते हैं। कभी कभी वो स्वयं आते हैं, कभी कभी अपने शास्त्रों को भेजते हैं, कभी कभी अपने नित्य पार्षदों को भेजते हैं। इस प्रकार से भगवान कोई न कोई मार्ग ढूंढ रहे हैं बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। इसलिए नम्मालवर जैसे जो कि विश्वक्सेन विष्णुदूत के अवतार हैं, ऐसे उनके पार्षदों को भी वो यहाँ पर भेजते हैं। तो प्रश्न ये है कि जो चैतन्य महाप्रभु का महाभाव था वो हा हा कृष्ण कह के इधर उधर जाया करते थे, तो अन्य जीवों में आ सकता है क्या? इस महाभाव को और कोई नहीं कर सकता प्रकट, केवल राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु, और कोई नहीं। परंतु इनको पदचिन्ह में चलते हुए उसका एक बूंद मात्र हमको मिल सकता है। वही ग्रह की भावना को प्राप्त करना हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखलाया, हम सबको सिखलाया है कि विप्रलंब भाव, विरह का भाव, ये मुलायम के भाव से ज्यादा श्रेष्ठ है। ये गौड़ी वैष्णव सिद्धांत है, तो इसकी नकल नहीं कर सकते। स्वाभाविक रूप से हमारी साधना करते करते, भगवान से तीव्र प्रार्थना करते हुए, हम आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी अगले जन्म में, भगवान और वैष्णवों के गुरु की कृपा से इस ऊंचे स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो महाभाव है वो नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दर्शन होंगे, उसके बाद